बलराम जयंती है, श्री बलराम जी का आविर्भाव दिवस। जब भी भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में प्रकट होते हैं तो बलराम जी किसी न किसी रूप में अवश्य उनके साथ ही प्रकट होते हैं। वैसे श्री बलराम श्री कृष्ण के नित्य साथी हैं, भगवत धाम में सदैव उनके संग में रहते हैं, लीला करते हैं। इसलिए जब श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं भौतिक जगत में तो साथ साथ में जैसे अन्य पार्षद आते हैं बलराम जी भी प्रकट होते हैं। जब श्री रामचंद्र के रूप में भगवान आए तो उस समय श्री बलराम जी ने अपने आप को लक्ष्मण के रूप में अवतीर्ण किया। जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो वही बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। इस तरह से हर लीला में बलराम जी अवश्य उपस्थित हैं। ऐसे कई हैं जो कहते हैं कि बलराम शेष इत्यादि ये जीवात्मा है हम जैसे, और उनको शक्ति प्रदान की गई है भगवान की लीला में भाग लेने के लिए, भगवान के कार्यों को संपन्न करने के लिए। परंतु श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों में इस बात की पुष्टि नहीं है, बल्कि श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि बलराम जी विष्णु तत्व हैं, भगवान के स्तर में है, जीव के स्तर में नहीं है। इस बात को समझने के लिए आइए यहां सामने जो चार्ट है उसको देखिए। परम सत्य श्री कृष्ण है, आदि पुरुष गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण। तो परम ईश्वर श्री कृष्ण है जो कि सबके आदि है और उनसे सब कुछ आता है। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं, दो तरह के विस्तार उनके होते हैं। एक है विभिन्नांश, जो कण मात्र जीवात्माएं हैं। विभिन्नांश इसलिए उनको कहा गया है कि वो भगवान से भिन्न होकर उनकी सेवा करते हैं या जिनका अस्तित्व वास्तव में भगवान के ऊपर निर्भर होते हुए भी वो अलग से रहने का प्रयास करते हैं। दूसरे हैं स्वांश कला। स्वांश कला के भी दो भाग हैं, एक है स्वांश और दूसरे हैं कला। स्वांश मतलब स्व अंश, अपने पहले विस्तार स्व अंश, वो है बलराम जी। इस स्वांश वर्ग में केवल बलराम है और उसके बाद बलराम अपने आप को विस्तार करते हैं। तो बलराम जी के भी जितने सारे अंश हैं और अंशों के अंश हैं उनको कला कहते हैं। संकर्षण से शुरुआत होते हुए कितने सारे विस्तारित रूप हैं भगवान के, लेकिन भगवान अपने आप को केवल बलराम के रूप में विस्तार करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। उसके आगे जितने भी रूप हैं भगवान के, विष्णु तत्व भी क्यों ना हो, वो सब बलराम से आते हैं, भगवान कृष्ण से नहीं। इसलिए देखा जाए तो बलराम जी अन्य सारे अवतारों के भगवान के रूपों के मूल हैं। भगवान बलराम से ही संकर्षण आदि आते हैं। तो आइए इसके बाद में दूसरा चार्ट देखते हैं और हम थोड़ा चैतन्य चरितामृत से भी पढ़ेंगे, जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी बलराम तत्व के बारे में समझाते हैं। सर्व अवतारे कृष्ण स्वयं भगवान तहर द्वितीय देह श्री बलराम। अनुवाद, भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के उत्स हैं। उत्स मतलब उद्गम। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर हैं। कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं। मानिए कि एक व्यक्ति अपने आप को दो में विस्तारित करे तो वही कृष्ण और बलराम है। जैसे मानो उनका द्वितीय शरीर है। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। अनुवाद, वे दोनों एक ही हैं, केवल शरीर में अंतर है। वे कृष्ण के प्रथम शरीर अंश काय व्यूह हैं और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक बनते हैं। एक ही स्वरूप दोहे, स्वरूप दोनों का एक ही है, भिन्न मात्र काय, काय मतलब शरीर, दोनों एक ही हैं। कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं। अंतर क्या है? केवल भिन्न मात्र काय, कि काय या शरीर उनका अलग है, बस एक ही व्यक्ति दो में विस्तारित हुए हैं, नहीं तो इनमें कोई शरीर कोई अंतर नहीं है। आद्य काय व्यूह, आद्य मतलब सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के विस्तार है वो, व्यूह मतलब विस्तार, आद्य मतलब सबसे पहले, काय मतलब शरीर। आद्य काय व्यूह मतलब बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सर्वप्रथम विस्तार है। कृष्ण लीला र सहाय, कृष्ण लीला में सहायता करते हैं भगवान कृष्ण के अलग अलग तरह से। अनुवाद यहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी के श्लोक का, वे दोनों एक ही हैं, केवल शरीर में अंतर है। वे कृष्ण के प्रथम शरीर अंश या काय व्यूह हैं और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक बनते हैं। तो यहां इस चार्ट से आप देख सकते हैं कि सर्व कारण कारणम श्री कृष्ण है। उनके सबसे पहले काय व्यूह है बलराम, बलराम जी से चतुर्व्यूह उत्पन्न होते हैं, संकर्षण, साथ साथ में वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये प्रथम चतुर्व्यूह है। फिर इस संकर्षण से नारायण, फिर संकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि, और इस संकर्षण से फिर पुरुषावतार आते हैं। वैसे अनेक विस्तार हैं जो इसके बीच में, जिनका वर्णन यहां पर इस चार्ट में नहीं है। जितने भी सारे वैकुंठ लोक हैं भगवान के धाम में, हर एक वैकुंठ लोक में बलराम जी के एक विस्तारित रूप है जो चतुर्व्यूह रूप में है, चतुर्व्यूह, और इनके सब ये चतुर्भुज भी हैं, चार भुजाओं के, और ये चतुर्व्यूह या भुज ये वैकुंठ, हर एक वैकुंठ लोक के ऊपर विराजे हैं। हम जब तिलक धारण करते हैं शरीर के ऊपर, तो हम अनेक भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, वासुदेवाय नमः। तो ये सब ऐसे जितने भी नाम है, ये सब भगवान के चतुर्भुज रूप हैं और ये सब अलग अलग वैकुंठ लोकों में विराजे हैं। इनमें अंतर क्या है? सारे शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हैं, लेकिन उनकी जो जिस प्रकार से उन्होंने ये धारण किया हुआ है, उसके अनुसार इनके अलग अलग नाम होते हैं। वैसे इन नामों में त्रिविक्रम, माधव, दामोदर में कोई अंतर नहीं। अलग अलग भुजाओं में उन्होंने अलग अलग ये आयुध जो है वो उन्होंने धारण किए हुए हैं। तो इन सब के विस्तारित रूप हैं बलराम, परंतु इनका वर्णन यहां पे हम नहीं कर रहे हैं। तो आखिर संकर्षण से पुरुषावतार आते हैं जो कि इस भौतिक जगत से संबंधित हैं। भौतिक जगत से संबंधित होने वाले केवल ये पुरुषावतार हैं। इनसे पहले जितने भी विस्तारित रूप हैं वो सब भगवान के धाम वैकुंठ जगत से संबंधित हैं। और फिर यहां से भौतिक जगत में सबसे पहले रूप है महाविष्णु, कारणो दक्षाय विष्णु, जो कि कारण सागर में विश्राम करते हैं और उनके त्वचा से अनंत कोटि ब्रह्मांड आते हैं। फिर यही महाविष्णु हर एक ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं, सारे ब्रह्मांड, हर एक ब्रह्मांड के भीतर ये गर्भोदकशायी विष्णु अपने पसीने से आधा ब्रह्मांड भर देते हैं। फिर उस जल के ऊपर शयन करते हैं अनंत शेष के ऊपर, उनका नाम है गर्भोदकशायी विष्णु, गर्भ उदकशायी विष्णु। उनके नाभि से कमल पुष्प आता है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी हैं, और इस ब्रह्मांड के भीतर यही गर्भोदकशाय विष्णु अपने आप को और एक विस्तारित रूप में प्रकट करते हैं, क्षीरोदकशाय विष्णु, क्षीर उदकशाय विष्णु, दूध के सागर में शयन करने वाले विष्णु। इस प्रकार से बलराम जी न केवल वैकुंठ जगत में बल्कि यहां पर भी भौतिक जगत में अपने आप को प्रकट कराते हैं, और इसी बात को यहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धारी कौरण कृष्ण रसेवन। भगवान बलराम मूल संकर्षण हैं। वे भगवान कृष्ण की सहायता करने के लिए पांच अन्य रूप धारण करते हैं। आपने करे न कृष्ण लीला रसहाय सृष्टि लीला कार्य करे धोरी चारिकाय। कृष्ण लीला के समय वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और चार अन्य रूपों का सृजन कार्य भी करते हैं। तो कृष्ण लीला में स्वयं भी वो भाग लेते हैं और अन्य चार कार्यों अपने विस्तारों से वो सृष्टि लीला में भाग लेते हैं, इस भौतिक जगत के सृष्टि लीला में। तो बलराम जी के पांच रूप हैं, स्वयं बलराम और फिर अन्य चार। ये अन्य चार कौन है? सृष्ट्यादिक सेवातार आज्ञा पालन शेष रूपे कौरे कृष्ण विविध सेवन। वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं और शेष के रूप में वे कृष्ण की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। तो इन चार रूपों में से तीन रूप है ये पुरुष अवतार और चौथे रूप है अनंत शेष। अनंत शेष जो है वो अनेक तरीकों से भगवान की सेवा करते हैं, उनकी शैया बन जाते हैं और यहां पर अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। हर एक फण पे उनके ब्रह्मांड ऐसे बैठे हुए हैं मानो कि सरसों के बीज। सरसों के बीज जो होते हैं उनका कोई प्राण वजन नहीं होता, बहुत हल्के होते हैं। अगर आपके मुट्ठी में आपने सरसों के बीज पकड़ लिए आपको थकावट महसूस नहीं होगी कि कितने भारे हैं ये। उसी प्रकार से हालांकि अनंत कोटि ब्रह्मांड इतने विशाल हैं, भारी हैं, परंतु जब ये अनंत शेष के फणों पे बैठ जाते हैं, आश्रित होते हैं, तो अनंत शेष को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़े आराम से, आसानी से इन सारे ब्रह्मांडों को वो धारण करते हैं। इस प्रकार से शेष भी अपने आप को तरह तरह के विस्तार करके वो भगवान की सेवा करते हैं। इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि बलराम जी के केवल एक अंश मात्र से ये सारे ब्रह्मांड आश्रित हैं। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं दसवें अध्याय में, जबकि वो अर्जुन को उनके सारे ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं इस भौतिक जगत के भीतर, और अंत में वो कहते हैं अथवा बहु नहीं तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। वो कहते हैं इतने विस्तार में मैंने तुमको ये ज्ञान दिया है फिर भी इसका कोई अंत नहीं, और कितना मैं तुम्हें बताऊं। अथवा किम बहु नहीं तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन, और कितना तुमको बताते रहूं। मेरे ऐश्वर्यों का, विस्तारों का, विभूतियों का कोई अंत नहीं है, ये असीमित है। ये इतना जान लो कि ये सारे जो भौतिक सृष्टि है एक अंशेन स्थितो जगत, केवल मेरे एक अंश मात्र से स्थित है। तो अनंत शेष हो या परमात्मा हो जो इस भौतिक सृष्टि का धारण करते हैं वो तो भगवान के, वो भी बलराम के अंश मात्र हैं। इस प्रकार से बलराम जी ही हैं जो अपने अनेक विस्तारित रूपों से इस सारे सृष्टि का पालन करते हैं। वैसे बलराम जी हालांकि भगवान हैं, विष्णु तत्व हैं, भगवान के पहले विस्तारित रूप हैं, लेकिन फिर भी उनको सेवक भगवान कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण सेव्य भगवान हैं, जिनकी सेवा की जाती है। कृष्ण वो भगवान है जिनकी सेवा की जाती है, बलराम वो भगवान है जो इस सेव्य भगवान की सेवा करते हैं, सेवक भगवान। सेव्य भगवान और सेवक भगवान। किस तरह से बलराम जी सेवा करते हैं भगवान कृष्ण की? अनेक रूपों से। हमने तो अभी सुना है कि सृष्टि लीला में भी बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का एक ही काम है और वो है गोलोक वृंदावन में रह के अपनी लीला करना, आनंद की लीलाओं को रचाना, यही उनका एकमात्र कार्य है। भगवान कृष्ण को वैसे सृष्टि लीला में कोई रुचि नहीं है जैसे एक व्यक्ति को केवल अपने धन से भोग करने की इच्छा होती है, दफ्तर में जाके दिन रात मेहनत करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन धनार्जन करने के लिए और कोई उपाय नहीं है, इसलिए व्यक्ति दफ्तर में जाता है, व्यवसाय के लिए जाता है। नहीं तो साधारण व्यक्ति की इच्छा होती है कि जितनी ज्यादा छुट्टियां हो, तनख्वाह मिलते रहे, अच्छा है। तो भगवान श्री कृष्ण से ही इच्छा आ रही है। भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे सृष्टि लीला में अटक जाने की इच्छुक नहीं है। सब जीवों को अपने कर्मों का फल देते रहना, उनको दंड देना, ये करना बहुत अच्छा काम नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते बलराम जी को सब सौंप देते हैं। फिर बलराम जी भी वो आगे चल के अपने अंशों को सौंप देते हैं। फिर ये सृष्टि के मामले संभालने की जिम्मेदारी जो है, ये सब बलराम जी के विस्तारित रूपों के ऊपर हो जाता है। लेकिन इसके अलावा बलराम जी पांचों रसों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जे जाय चे नाचाय ते ताय चे कौरे नृत्य। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ईश्वर, परम ईश्वर केवल कृष्ण है, अकेले। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, भृत्य मतलब सेवक, अन्य जितने भी हैं वो सब सेवक हैं भगवान कृष्ण के। और ये न केवल विभिन्नांश जीवों की बात हो रही है, न केवल बड़े बड़े देवी देवताओं की जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि, परंतु जितने विष्णु तत्व भी हैं, जितने भगवान के अवतार भी हैं, वो सब भी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। ये है कृष्ण का स्थान, उनमें से बलदेव या बलराम भी मौजूद हैं। तो आप तो जानते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति या सेवा करने के लिए पांच रसों का वर्णन किया गया है। इन पांच रसों में या भावों में भगवान की सेवा की जा सकती है। ये पांच रस कौन से हैं? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस या माधुरी रस। तो शांत रस में वैसे जैसे कि शब्द से हम समझ सकते हैं, सब कुछ शांत है। शांत मतलब ये मध्यस्थ श्रेणी का है। वैसे शांत रस में सेवा भावना इतनी विकसित नहीं होती है। सेवा है परंतु इतना विकास नहीं हुआ है इस भाव का। तो बलराम जी कैसे सेवा करते हैं भगवान कृष्ण के शांत रस में? सबसे पहले उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के आभूषण, उनके कपड़े, उनकी शैया, उनकी बांसुरी इत्यादि के रूप में प्रकट कराते हैं। भगवान कृष्ण कुछ नहीं करते, केवल आनंद लेते हैं। बाकी जितना भी काम है वो सब बलराम आदि करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का पीतांबर, भगवान श्री कृष्ण के गहने, आभूषण, अन्य सब कुछ जो भी है, उनका घर सब बलराम जी बनाते हैं। बलराम जी से ये उत्पन्न होते हैं। यहां तक कि ये सारे आध्यात्मिक जगत भी बलराम जी से ही उत्पन्न होती है। वैकुंठ लोकों में अनंत कोटि वैकुंठ लोक हैं, साथ साथ उनमें से प्रमुख लोक जो है वो है गोलोक वृंदावन, और गोलोक वृंदावन भी बलराम जी के निर्देशन में उत्पन्न होता है। वैसे देखा जाए तो उत्पन्न होना ये सही शब्द नहीं है, क्योंकि ये भौतिक जगत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो भौतिक जगत की सृष्टि की शुरुआत का समय होता है कि ये उत्पन्न हुआ, सृष्टि का सृजन हुआ, तो स्वाभाविक तौर से हम प्रश्न करते हैं कब हुआ, काल का प्रश्न आ जाता है। परंतु जब हम कहते हैं कि बलराम जी से आध्यात्मिक जगत उत्पन्न हुआ है, तो हम ये शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते कि कब हुआ। काल जिस प्रकार से यहां पे कार्य करता है, वो वहां पर भगवान के धाम में कार्य नहीं करता। आध्यात्मिक जगत सनातन है, कोई ऐसे समय नहीं है जबकि इसका सृजन हुआ, लेकिन फिर भी तत्व से हम कह सकते हैं कि बलराम इसकी उत्पत्ति के कारण है। गोलोक वृंदावन एक कमल पुष्प के समान है, और इसकी तुलना कमल के लिए इसलिए की जाती है कि ये कमल के समान सुंदर है, कमल के समान शुद्ध है, और कमल की तरह ही ये अपने आकार को बदलता है, कभी अपने आप में समेट लेता है, कभी खिल जाता है। रात में कमल पुष्प जो है वो छोटा हो जाता है, बंद हो जाता है उसकी पंखुड़ियां, और दिन में सूरज की रोशनी से वो खिल जाता है। इसलिए कमल को अरविंद कहते हैं और सूरज को अरविंद बंधु कहते हैं। पिछले साल आपको याद होगा कि जब हमने यमुनाष्टकम गाया था तो उसमें यमुना देवी को अरविंद बंधु नंदिनी के नाम से संबोधित किया गया था। अरविंद बंधु, अरविंद मतलब कमल, बंधु मतलब मित्र, तो सूर्य देव है कमल के मित्र, क्योंकि जब सूरज की रोशनी होती है सूर्योदय से शुरुआत होकर तो कमल जो है खिल उठते हैं, रात को बंद हो जाते हैं, और नंदिनी मतलब उनकी पुत्री। तो सूर्य देव विवस्वान की पुत्री हैं यमुना देवी, इसलिए अरविंद बंधु नंदिनी। तो गोलोक वृंदावन जो है वो भी भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए कभी कभी छोटा हो जाता है, कभी कभी बड़ा हो जाता है, अनेक स्थानों में अंतर जो है कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण रासलीला करने के लिए रोज नंदग्राम से वंशीवट जाते, जो कि प्राय 60 किलोमीटर की दूरी है, परंतु रोज एक घंटे में आराम से जाकर आज चले आते थे। क्यों? इसलिए वैसे भगवान कृष्ण चाहे तो एक क्षण में भी जा सकते हैं, गोलोक वृंदावन से यहां पर एक क्षण में भी आ सकते हैं, परंतु क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मनुष्य लीला कर रहे थे इसलिए उन्होंने ठीक नहीं समझा कि वो ऐसे कोई अद्भुत कार्य कर दिखाए, इसलिए उनके धाम ने ही उनकी सेवा की। उनके धाम में वो रात को या जब कृष्ण को चलना पड़ता था वंशी नंदग्राम से वंशीवट, तो जगह कम हो जाता था, अंतर कम हो जाता था, और इस प्रकार से गोलोक वृंदावन इस कमल पुष्प की तरह कभी छोटा कभी बड़ा ऐसे होता था। इस प्रकार से बलराम जी जो है इस रस में वो सहायता करते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए। अब वैसे देखा जाए तो गोलोक वृंदावन में सबसे प्रमुख रस है माधुर्य रस या श्रृंगार रस, और अन्य जितने भी रस हैं वो इस रस की वृद्धि के लिए सेवा करते हैं, ताकि भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ में जो लीला है वो और भी मधुर हो जाए। इसलिए बलराम जी ने भी ऐसे भगवान श्री कृष्ण के रासलीला को और भी अच्छा और भी मधुर बनाने के लिए ये भगवान कृष्ण की सेवा की। फिर आगे है दास्य रस। दास्य रस में बलराम जी तरह तरह की सेवाएं करके वो भगवान के लीलाओं को और भी रसमय बनाते हैं। साथ साथ में भगवान कृष्ण के साथ में सख्य रस और वात्सल्य रस भी बलराम जी सेवा करते हैं। अब आइए एक और चार्ट में आपको दिखाते हैं कि किस तरह के मित्र होते हैं, क्योंकि बलराम जी प्रमुखतः सख्य रस में है भरोसे। हरे कृष्णा। ठीक है, सख्य रस में बलराम जी श्री कृष्ण के साथ ऐसे खेलते हैं कि मानो दोनों साधारण बच्चे हैं। कभी कभी जब श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बाल मित्रों के साथ वन में जाते थे, अनेक खेल क्रीड़ाओं में भाग लेते थे, कभी एक दल बन जाता कृष्ण का, दूसरा दल बलराम का, और कभी कभी बलराम का दल जो है वो विजय प्राप्त करता। पर उस समय दूसरे ग्वाल बाल कहते, अगर बलराम का दल जीत गया है तो इसका मतलब है कि हमसे ज्यादा कमजोर कोई और नहीं है जगत में। मजाक उड़ा रहे हैं, ऋषि से कहने का मतलब है ऐसे ग्वाल ग्वाल मजाक उड़ा रहे हैं बलराम जी का। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस तरह से कृष्ण और बलराम साथ में लीला किया करते थे। कभू गुरु कभू सखा कभू भृत्य लीला पूर्व ये न तीन भावे ब्रज कैलो खेला। नित्यानंद प्रभु की बात हो रही है। वे चैतन्य महाप्रभु की सेवा कभी अपने गुरु रूप में तो कभी मित्र और दास के रूप में करते थे, जिस प्रकार बलराम ने व्रज में इन तीन विभिन्न भावों में कृष्ण के साथ खिलवाड़ किया। नित्यानंद प्रभु और बलराम में कोई अंतर नहीं। तो जिस प्रकार से गुरु सखा भृत्य या दास इन तीनों भावों में जैसे बलराम जी ने सेवा की कृष्ण की, वैसे नित्यानंद प्रभु ने भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा की, ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। विषहन कृष्णासने माथा माथिरण कभु कृष्ण कौरे तार पाद संवाहन। बलराम कृष्ण के सिर से सिर फिराकर बैल की तरह लड़ते थे और कभी कभी कृष्ण बलराम जी के पैर दबाते थे। हरे कृष्ण। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इनकी लीला बाल लीला जो है या पौगंड लीला इतनी मधुर थी, कभी एक दूसरे जो है बैल का वेश धारण करके सर से टक्कर लगाते और कभी कृष्ण बलराम जी के पाद सेवा करते। आपना के भृत्य कोरी कृष्ण प्रभु जाने कृष्ण रकला रकला आपना के माने। वे अपने आप को दास मानते हैं और कृष्ण को अपना स्वामी, इस प्रकार वे अपने को कृष्ण के अंश का भी अंश मानते हैं। फिर श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है। वृषायमाणौ न दंतो युयुधाते परस्परम् अनुकृत्यारुतै जन्तुः चेरतुः प्राकृतौ यथा। सामान्य बालकों की तरह वे एक दूसरे से लड़ते समय सांडों की तरह नांद रहे थे और तरह तरह के पशुओं की बोलियों की नकल करते थे। तो कृष्ण बलराम साथ में मिलकर कभी सांड की तरह मतलब बैल या सांड की तरह आवाज करते, एक दूसरे से लड़ाई करते और कभी कभी पशुओं की बोलियों की नकल करते। इस प्रकार से सख्य रस में बलराम जी श्री कृष्ण को आनंद दे रहे हैं और फिर किस तरह वो कृष्ण भी उनकी सेवा करते हैं, इसका भी वर्णन बड़े सुंदर ढंग से श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में आता है। क्वचित् क्रीडा परिश्रांतम् गोपोत्संगोपबर्हणम् स्वयं विश्रामयत्यार्यम् पारसंवाहनाभिः। अनुवाद सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है। कभी कभी जब कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम खेलने से थक जाते और अपना हाथ किसी ग्वाल बाल की गोद में डाल देते तो स्वयं भगवान कृष्ण उनके पांव दबाकर उनकी सेवा करते। गोप उत्संग उपबर्हणम् तो अपने ही गोदी को वो एक तकिया बना देते। स्वयं विश्रामयत्यार्यम् आर्यम मतलब उनके बड़े भाई बलराम उनकी थकावट दूर करते। कैसे दूर करते? पाद संवाहनातिथि उनके चरणों को दबाते, उनको कभी कभी पंखा लगाते, कभी कभी शरीर के अन्य भागों को भी मालिश करते। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी बलराम की सेवा की। किया करते थे। परस्पर ऐसे सख्य रस में दोनों का आदान प्रदान हुआ करता था। कृष्ण भगवान भी अपने ग्वाल बाल मित्रों की सेवा ऐसे करते थे। बलराम की बात तो दूर है, तो भगवान को बहुत आनंद आता था। इस प्रकार से दोनों के बीच में ऐसे सुंदर लीलाएं हुआ करती थी। तो ऐसे जब बाल लीलाएं होती थी तो उनमें भगवान श्री कृष्ण वो तो मुख्य नायक हैं और बलराम जी उनके मुख्य सहायक। किसी भी नाटक में, सिनेमा में कभी एक नायक होता है ना, और उनके साथ में हमेशा कोई रहता है उनके सहायक। तो बलराम जी ये भूमिका निभाते हैं कृष्ण लीला में। तो ये सख्य रस का आस्वादन करते हैं बलराम जी और कृष्ण को कराते भी हैं। सख्य रस की थोड़ी चर्चा हम आज करेंगे, और विशेष करके भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने इसका बहुत सुंदर रूप से विश्लेषण और वर्णन किया है। क्योंकि बलराम जी की प्रमुख सेवा भगवान कृष्ण के लिए सख्य रस में है। तो आइए यहां पर आप देखेंगे कि कितने तरह के मित्र होते हैं भगवान कृष्ण के। वैसे भगवान कृष्ण के मित्रों को वयस्य कहा जाता है, संस्कृत भाषा का प्रयोग है, वयस्य होना चाहिए वैसे। वयस्य तो इनमें से दो प्रकार के हैं, एक जो व्रज सखा और दूसरे हैं पूर्ववयस्य। पूर्व मतलब जो बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं, जैसे हस्तिनापुर है, मथुरा है, द्वारका है, तो यहां पे भी उनके कई मित्र रहा करते थे। कौन है, कोई नाम बता सकते हैं आप पूर्ववयस्यों में से कौन है? अर्जुन और उद्धव, सारे पांडव उनके मित्रों के बराबर हैं। सुदामा, विप्र, द्वारका के वयस्य, तो इनको पूर्ववयस्य कहते हैं, और वृंदावन के मित्रों को सखा कहते हैं, व्रज सखा। तो व्रज सखा वास्तव में इनका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो ज्यादा तीव्र माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विरह के बिना एक क्षण भी ये मित्र नहीं रह सकते हैं। उनकी प्रेम की तीव्रता बहुत तीव्र है, इतने तीव्र है कि एक क्षण भी कृष्ण अगर उनके साथ में नहीं रहे उनके लिए असहनीय हो जाता है। तो इन व्रज सखाओं के भी चार श्रेणियां हैं, रूप गोस्वामी ऐसे बताते हैं। सुहृत जो कि शुभ चिंतक है, सखा यानी जो मित्र हैं, प्रिय सखा जो सखा प्रिय हैं, और प्रिय नर्म सखा जो अति प्रिय है भगवान कृष्ण के लिए। तो ये सुहृत कौन है? ये सुहृत वो मित्र है भगवान श्री कृष्ण के जो उम्र में थोड़ा ज्यादा है श्री कृष्ण से, थोड़े बड़े हैं भगवान कृष्ण से। सखा वो है जो कि भगवान श्री कृष्ण से उम्र में थोड़े कम है, और प्रिय सखा वो है जो कि भगवान श्री कृष्ण के उम्र से बिल्कुल बराबर है, उसी उम्र के, हम उम्र के हैं। और प्रिय नर्म सखा वो है, उम्र में एक ही है लेकिन और भी उनका तीव्र उनकी आसक्ति है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो सुहृत शुभचिंतक, शुभचिंतक इसलिए हैं कि उम्र में थोड़े बड़े हैं और बड़े भाई की तरह या बड़े एक प्राय वात्सल्य भाव उनके मन में आ जाता है, और वो सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण कैसे किया जाए। वो कभी कभी चिंतित रहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जंगल में जा रहा है, अभी कोई पशु आक्रमण न करे, कोई असुर न आए, कुछ खतरा न हो, तो हमेशा वो तैयार रहते हैं श्री कृष्ण की रक्षा के लिए। कभी कोई खतरा आए तो तुरंत सामने आ जाते हैं, और जैसे कभी किसी ने बादल देखा गोवर्धन के ऊपर तो सब तैयार हो जाते हैं अपने अस्त्र धारण किए हुए, फिर सोचा ये तो असुर नहीं है, ये तो केवल एक बादल है, बरसात का बादल है। और ये जो भाव है उनका, ये एक वात्सल्य भाव है। हैं सखा, उनके मित्र हैं, परंतु उम्र में बड़े होने की वजह से उनके सख्य भाव में एक वात्सल्य भाव का मिश्रण है। इसलिए कृष्ण को अपना छोटा मित्र समझकर उनकी रक्षा करने की इच्छा रखते हैं। इनमें से कई हैं, जैसे कि विजय, सुभद्र, भद्रवर्धन, यक्ष, मंडली भद्र और बलराम। मंडली भद्र और बलराम ये दो प्रमुख हैं इन सुहृद मित्रों में से। मंडली भद्र का जो शरीर का रंग है वो पीला है और हमेशा वो कृष्ण की सेवा के लिए दूसरों को आदेश देते हैं। जब वापस आते हैं तो सोचते हैं कि देखो अभी कृष्ण बहुत थक गया होगा, अब देखो तुम ऐसे इसके पैरों को मालिश करो, मैं इसको सर दबाता हूँ। सारे दिन भर कृष्ण भी गाय चराते चराते वन में घूमते घूमते अब बहुत थक गया होगा, तो तुम पैर दबाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, जैसे एक माता या पिता करते हैं अपने बच्चों के प्रति। और उसी प्रकार से बलराम जी भी हैं। बलराम जी कितने दिन से बड़े हैं श्री कृष्ण से? पंद्रह दिन से बड़े हैं। 15 दिन से छोड़ा कम वास्तव में, बलराम जयंती से लेकर जन्माष्टमी तक। तो वैसे बलराम जी भी इसी भाव में उनकी सेवा करते हैं। कभी जब खतरा आता है तो बलराम जी सामने आते हैं। एक बार उन्होंने अपने मित्र से संदेश भेजा कि जाओ कृष्ण से कहो कि आज कालिया हृदय में नहीं जाए, हृदय मतलब जो सरोवर है उसमें नहीं जाना, क्योंकि आज कृष्ण का जन्मदिवस है और मैं भी माता यशोदा के साथ कृष्ण का स्नान कराना चाहता हूं, इसलिए कृष्ण को जाके कहो कि कहीं नहीं जाए। इस प्रकार से बलराम जी का यह भाव होता है। बलराम जी, रूप गोस्वामी कहते हैं, उनकी शरीर की कांति सफेद है जैसे शरद ऋतु का बादल। अपने गले में हमेशा गुंज माला पहनते हैं। उनकी जो भुजाएं हैं बहुत सुंदर हैं, लंबे हैं और नीचे तक पहुंचते हैं। साथ साथ में उनका जो वक्षस्थल है बहुत विस्तार उसका बड़ा है, चौड़ा है, और साथ साथ में उनकी जो गला है, आवाज है, वो बहुत गंभीर है। इस प्रकार से बलराम जी का वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी। साथ साथ जो अन्य सखाएं हैं, अन्य मित्र हैं उनके, व्रज सखा, सखा ये उम्र में कम होने की वजह से ये कृष्ण की सेवा करते हैं, इसलिए इनकी सेवा में दास्य भाव का मिश्रण है। मुख्य भाव है सख्य, लेकिन उम्र में कम होने की वजह से दास्य भाव का मिश्रण। जिस तरह से सुहृतों में वात्सल्य भाव का मिश्रण है, इसी तरह से इनके भक्ति में, इनके प्रेम और सेवा में दास्य भाव का मिश्रण है। इनमें से प्रमुख जो है वो है वृषभ, विशाल, ओजस्वी, देवप्रस्थ, वरुथप इत्यादि। और ये सुबह सुबह आते हैं कृष्ण के पास गाय चराने के लिए। कृष्ण अभी अभी उठे हैं नींद से और वो आके कृष्ण भगवान के दरवाजे में खड़े हो जाते हैं। माता यशोदा देखती हैं उनको, अरे विशाल तुम वहां दरवाजे में क्यों खड़े हो, अंदर आओ, अंदर आओ। और फिर ये सारे सखा जो हैं माता यशोदा की सहायता करते हैं भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करने के लिए। उनको कपड़े पहनाए जाते हैं, आभूषण पहनाए जाते हैं। और जब श्री कृष्ण को विशाल नूपुर पहना रहे होते हैं तो श्री कृष्ण अपने बांसुरी से हल्के से उसके पीठ पे मारता है। तो माता यशोदा फिर कृष्ण से कहती है, तुम क्यों चिढ़ा रहे हो उसको। फिर दोनों हंसने लगते हैं, कृष्ण और विशाल, दोनों को बड़ा आनंद आता है। और इस प्रकार से ये सारे सखाएं कृष्ण की सेवा करते हैं, पीछे पीछे उनके हमेशा रहते हैं। जब कोई कृष्ण के गाय इधर उधर चले जाते हैं तो वो कृष्ण को बताते हैं, देखो देखो तुम्हारे एक गाय वो वहां पे चला गया, ये वहां पे चली गई, हंसनी वहां पे चली गई, चंद्रनी वहां पे चली गई। तो फिर कृष्ण को धन्यवाद देते हैं, फिर उन गायों को बुला ले आते हैं। तो ये इनका काम है, क्रीड़ा करना तो है ही, लेकिन वो भी ध्यान रखते हैं कौन सी गाय कहां पे गई ताकि कृष्ण को कोई तकलीफ नहीं हो। तो ये है सखा। और प्रिय सखा वो हम उम्र के हैं कृष्ण के, जैसे श्रीदामा, सुदामा, दामा, स्तोक कृष्ण, भद्रसेन इत्यादि। और हम उम्र होने की वजह से इनकी निकटता जो है प्रेम की वो ज्यादा है अन्यों से। वो हमेशा श्री कृष्ण के साथ चुटकुले सुनाते रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कभी श्री कृष्ण की टांग भी खींचते हैं और इस प्रकार से बड़े आनंद में रहते हैं। ऐसे ही सखाओं में, प्रिया सखाओं में एक हैं मधुमंगल। मधुमंगल का नाम तो आपने सुना है। वैसे ज्यादातर उनके जो मित्र हैं वो वैश्य परिवार के हैं, परंतु मधुमंगल ब्राह्मण परिवार के हैं और हमेशा अपने ब्राह्मणत्व का गर्व रखते हैं। और मधुमंगल को लड्डू बहुत पसंद है और उनका पेट भी थोड़ा ज्यादा बड़ा है, लड्डू खा के, मिठाई खा खा के, जैसे कि ब्राह्मणों के अक्सर होते हैं। ऐसे बताया जाता है कि ब्राह्मण वो तब तक नहीं होता है, एक हमारे संस्था के भक्त बता रहे थे कि सच्चा ब्राह्मण वो नहीं होता है जब तक कि जब यजमान के घर वो भोजन खाने जाए, अगर वो वापस घर में चल के आए तो सच्चा ब्राह्मण नहीं है। मतलब इतना खाना चाहिए कि उसे कोई बिस्तर पे लिटाकर, खटिया पे लिटाकर उसको ले आना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बहुत ज्यादा घी वगैरह पीकर, घी ग्लासों ग्लास घी पी जाते हैं, तो खैर वो भी मधुमंगल के संप्रदाय में आ रहे होंगे। तो मधुमंगल को लड्डू चाहिए थे, तो मधुमंगल ने जाके कृष्ण से कहा कि देखो कृष्ण, मैं जानता हूं तुम राधा रानी से मिलना चाहते हो, लेकिन ये जान लो कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद के सिवाय कुछ नहीं होगा, कोई भी कार्य तुम्हारा सफल नहीं होगा। अगर तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, तो तुम्हें मेरे आशीर्वाद की आवश्यकता है, तो मैं तुम्हें खूब आशीर्वाद दूंगा, लेकिन मुझे दक्षिणा लड्डू चाहिए, मुझे लड्डू देने चाहिए। और अगर ब्राह्मणों को तुमने अप्रसन्न किया, कुछ नाराज किया, तो ऐसे दुर्घटना तुम्हारे जीवन में हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण डर के जल्दी से जल्दी जाते हैं, क्योंकि उनको आशीर्वाद चाहिए, राधा रानी से मिलने को जाना है। फिर खूब लड्डू देते हैं, खिलाते हैं मधुमंगल को। इस प्रकार से मधुमंगल खुश हो जाते हैं, लड्डू खाते हैं, खूब हृदय से आशीर्वाद देते हैं कृष्ण को। तो इस प्रकार से हंसी मजाक के चलता है प्रिय सखाओं में से। और फिर है प्रिय नर्म सखा, जैसे सुबल, अर्जुन, गंधर्व, उज्ज्वल इत्यादि। इनमें से प्रमुख हैं उज्ज्वल और सुबल, और सुबल तो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। इस प्रकार से अनेक सखाएं हैं, इनके साथ भगवान श्री कृष्ण लीला करते रहते हैं, लेकिन बलराम जी सुहृद श्रेणी में हैं। हालांकि सुहृद श्रेणी के जो मित्र होते हैं, वयस्य होते हैं, वो सखा की तरह भी, प्रिय सखा की तरह भी कभी कभी हंसी मजाक करते हैं, सेवा करते हैं, परंतु ये वात्सल्य भाव के मिश्रण की वजह से इनके सख्य भाव में थोड़ी बहुत कमतरता हो जाती है, लेकिन इसमें भी रस है। तो श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ इस प्रकार से खेलते रहते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि कई ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने विश्लेषण किया है कि कई बार ये जो रस है, पांच रस, कभी शुद्धता में नहीं रहते, कई भक्तों में मिश्रण होता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज, उनका क्या रस है भगवान कृष्ण के साथ? प्रमुख रस कौन सा है? सख्य है, क्योंकि सारे पांडव भगवान श्री कृष्ण के मित्र के बराबर थे, भाई के बराबर थे। द्रौपदी का भी वही है कृष्ण के साथ। परंतु पांचों पांडव हालांकि सख्य रस में हैं, लेकिन फिर भी इनमें अन्य रसों का मिश्रण है। युधिष्ठिर महाराज और भीमसेन कृष्ण से उम्र में थोड़े बड़े हैं, इसलिए उनके सख्य रस में कम है, इसलिए उनकी भक्ति में या उनकी सेवा में दास्य रस का मिश्रण है। इसलिए जब श्री कृष्ण पांडवों से मिलते थे, जैसा कि भागवत में वर्णन आता है, तो युधिष्ठिर महाराज के सामने आते थे तो श्री कृष्ण झुक जाते थे और युधिष्ठिर महाराज उनको आलिंगन करते, लेकिन आलिंगन के पहले श्री कृष्ण पैर छूते थे युधिष्ठिर महाराज का। जब अर्जुन को मिलते थे तो दोनों केवल आलिंगन करते थे, और जब नकुल और सहदेव श्री कृष्ण के सामने आते थे तो नकुल सहदेव श्री कृष्ण के सामने झुकते थे। इस प्रकार से हालांकि वो सख्य रस था, लेकिन सख्य रस में उम्र के हिसाब से उस सख्य रस का मिश्रण हो जाता है अन्य रसों से। तो ठीक उसी प्रकार से रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि बलराम जी का सख्य रस है प्रमुखतः, परंतु इस सख्य रस का मिश्रण वात्सल्य रस से कभी कभी हो जाता है, क्योंकि बलराम जी कृष्ण से उम्र में थोड़े बड़े हैं।
साथ साथ में, क्योंकि बलराम जी अनेक तरह से कृष्ण की सेवा करते हैं, इसलिए वो दास रस का मिश्रण भी है उनके अंदर, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज के अंदर भी दास रस का मिश्रण भी है। जैसे श्री कृष्ण बलराम जी के चरण दबाते थे, मालिश करते थे, उसी प्रकार बलराम भी करते थे। तो गोलोक वृंदावन में हम देखते हैं कि ऐसे सुंदर रसों का मिश्रण होता है। ये रसाभास नहीं है, रसों का मिश्रण है थोड़ा, और इसलिए इन रसों के मिलने से बलराम जी को अनेक रसों का स्वाद मिलता था कृष्ण की सेवा करने में। दास रस में जब बलराम सेवा करते थे तो वो न केवल चरण दबाते थे, लेकिन श्री कृष्ण के आदेश का पालन भी कभी कभी करते थे। बलराम जी अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो वास्तव में श्री कृष्ण के अंश हैं। श्री कृष्ण का और एक नाम है सर्वाराध्य। सर्वाराध्य मतलब वो जो कि सबके द्वारा आराध्य है, न केवल जीवों के द्वारा, न केवल देवताओं के द्वारा, लेकिन स्वयं विष्णु तत्व और यहां तक कि बलराम के द्वारा भी। तो बलराम इस तत्व को अच्छी तरह से जानते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि एक बार जब श्री कृष्ण बलराम के सामने आए तो खुद ब खुद उनका जो हल है वो झुक गया और श्री कृष्ण के चरणों में आ गया। जब श्री कृष्ण बलराम जी के सामने आए तो बलराम जी उनके बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं, तो उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए नीचे झुके तो उन्होंने देखा कि हल नीचे आ गया उनके चरणों में। और फिर निष्कर्ष क्या निकला, रूप गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी बलराम न जानते हुए भी वो श्री कृष्ण के सामने झुक जाते हैं, हालांकि वो बड़े भाई हैं, दास भाव है इनका ये, और उनका जो हल है वो भी खुद भगवान के चरणों में आ गया। इस प्रकार से बलराम जी की सेवा में दास रस का मिश्रण भी कभी कभी देखा जाता है। और कभी कभी भगवान श्री कृष्ण बलराम का आश्रय लेते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि बलराम जी का वात्सल्य भाव है कृष्ण के प्रति। रूप गोस्वामी इस लीला का वर्णन करते हैं। एक गोपी थी जो कि माता यशोदा की सेविका थी, उनका नाम था जरती। और जरती के घर में एक बार श्री कृष्ण घुसे मक्खन चोरी करने के लिए। मक्खन चोरी कर रहे थे लेकिन जरती ने देख लिया, और जब जरती ने देखा तो श्री कृष्ण जोर से भागने लगे, जितना जोर से हो सका उनके लिए, उनके छोटे छोटे पैरों के चरणों के लिए, और भागते हुए सीधे डर डर के वो बलराम जी के पास आए और कहने लगे, भैया देखो मैंने मक्खन चोरी की जरती के घर में, अब वो मेरा पीछा कर रही है। तो बलराम जो है, और बलराम के शरण में कृष्ण आ गए, किसके लिए, कि मुझे बचाओ, अब ये मेरे पीछा कर रही है, मुझे डांटने वाली है, पीटने वाली है, मैं चोरी कर ली लेकिन बताना नहीं किसी को। तो जब श्री कृष्ण मानो कि ऐसे घबरा गए और बलराम जी का आश्रय लेने के लिए आए तो देवलोक से जो ऋषि मुनि हैं वो सब देख रहे थे, तो देखते देखते वो हंसने लग गए, क्योंकि देख के जैसे आप सब हंसने लगे ना सुन के कि श्री कृष्ण बलराम का ऐसा शरण ले रहे हैं, मानो कि वो डर गए हैं। तो प्रत्यक्ष उस समय ये सारे ऋषि मुनि देख रहे थे इस लीला को, तो भी हंसने लगे, लेकिन किस तरह की हंसी थी उनकी, स्मिता, मतलब हंस रहे थे लेकिन अपने दांत नहीं दिखा रहे थे। रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति भाव में आकर भी अनेक तरह के हंसी होते हैं। हंसी का विश्लेषण सुनना चाहते हैं, कितने तरह के हंसी होते हैं। भगवान कृष्ण भी जब हंसते हैं तो तरह तरह से हंसते हैं। स्मित कृष्ण, भगवान कृष्ण का और एक नाम है, एक सन्यासी हमारे इस्कॉन में, स्मित कृष्ण स्वामी। स्मित मतलब जिनकी मुस्कान हल्की है, जिस मुस्कान में दांत दिखाई नहीं देते हैं लेकिन गाल से आंखों से पता चलता है कि व्यक्ति हंस रहा है, तो ये स्मित हंसी थी इन ऋषि मुनियों की। जो भगवान कृष्ण को देखा तो हंसने लगे कि ये बलराम का आश्रय ले रहे हैं। और हसिता, हसिता मतलब जब दांत दिख रहे हैं, जैसे जब एक बार भगवान कृष्ण ने राधा रानी के तथाकथित पत्नी अभिमन्यु का वेश धारण किया और वो घर में आए और श्रीमती राधा रानी के साथ में रहे। और जब असली अभिमन्यु आए तो अभिमन्यु की माँ जटिला ने उनको खूब पीटा। तब अन्य जो है वहां पे वो हंस रहे थे, मतलब हंस रहे थे, दांत भी दिख रहे थे, थोड़ा दिख रहा था दांत, ज्यादा नहीं। और तीसरा है विहसित, वो हंसी भक्ति में आकर जबकि दांत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, आपको छिपाने की बात नहीं है। वो हंसी थोड़ी ज्यादा हो गई है इसलिए दांत छुपाना संभव नहीं हो रहा है, सीधे से दांत दिख जाते हैं। और आगे चल के अवहसित, जबकि हंसी इतनी हो जाती है कि गाल फूल जाते हैं और आंख भी बहुत छोटे हो जाते हैं। और इससे ज्यादा अपहसित, फिर इतनी हंसी होती है कि आंख में से आंसू आते हैं और कंधे जो हिलने लगते हैं। और आखिर में अति हसित, मतलब एक व्यक्ति को इतनी हंसी आती है कि वह ताली मारने लगता है, कूदने लगता है। तो वृंदावन के अलग अलग ऐसे घटनाओं के बारे में भी रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं कि अलग 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 समय में कैसी अलग अलग हंसी हुई। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे बलराम का आश्रय लिया तो सारे स्वर्ग लोक के देव लोक के ऋषि मुनियों ने उनका आश्रय लिया, वो ऐसे हंसने लगे इस दृश्य को देखकर। तो खैर ऐसे बलराम जी सेवा करते रहते हैं भगवान कृष्ण के। और माधुरी रस में भी बलराम जी सेवा करते हैं अनंग मंजरी गोपी के रूप में। ये एक मंजरी है, वास्तव में ये श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है और ललिता और विशाखा सखी की बहुत प्रिय है। केतकी के फूल के रंग के वस्त्र पहनती है, मंजरी है मतलब उम्र में कम है। और इस प्रकार से बलराम जी भी अनंत रूपों में माधुरी लीला में भी वो भाग लेते हैं। तो ऐसी कोई लीला नहीं है जहां बलराम जी किसी न किसी रूप में किसी न किसी एक तरह से उपस्थित नहीं है। तो इसलिए बलराम को सेवक भगवान कहते हैं, तरह तरह से वो भगवान की सेवा करते हैं। बलराम जी जब श्री कृष्ण के साथ में द्वारका में भी गए तो द्वारका से एक बार वो 2 महीने के लिए वृंदावन में लौट कर आए। और द्वारका में यहां पे लौट कर सारे ब्रजवासियों के को उन्होंने सांत्वना दी, क्योंकि सब कृष्ण के विरह में बहुत दुखी थे। तो भगवान बलराम जी ने उनको सांत्वना दी, उनको कृष्ण से संदेश दिया। और जब वहां पर रहे तो उन्होंने भी रासलीला की, लेकिन उन गोपियों के साथ नहीं जिनके संग श्री कृष्ण ने रासलीला की, क्योंकि यह रसाभास हो जाता है। क्योंकि बलराम जी थोड़े उम्र में बड़े हैं ना कृष्ण से, तो उनकी गोपियां जो हैं वो भी थोड़ी उम्र में थोड़ी बड़ी हैं कृष्ण के गोपियों से। और कृष्ण की जो गोपियां हैं वो बलराम जी के प्रति वो भाव नहीं रखते जो कि वो कृष्ण के प्रति रखती हैं। वो बलराम जी उनके लिए बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं। तो बलराम जी उनके साथ कैसे रासलीला कर सकते हैं? उनके जो गोपियों का दल है वो अलग है। और इसलिए रामघाट नाम के स्थान पे बलराम जी ने ये की रासलीला की। और आज भी ये स्थान है रामघाट, जो कि ब्रज में शेरगढ़ नाम के गांव के पास में ही है। तो वहां पर बलराम जी के लीला स्थली रासलीला स्थली है। न केवल अपनी रासलीला, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते थे तब भी भगवान न केवल अनंग मंजरी के रूप में भाग लेते थे, परंतु एक बार जब वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर थे और रासलीला शुरू हो गई गोवर्धन के पास, तो बलराम जी झुक के ऐसे देख रहे थे और इतने मग्न हो गए रासलीला देखते देखते कि अपने आप को ही भूल गए। उनका रंग पूरा कृष्ण के जैसा काला हो गया, सांवला हो गया। और आज भी गोवर्धन पर्वत के ऊपर बलराम जी का मंदिर है और इस मंदिर में बलराम जी की मूर्ति काले रंग की है, वो ऐसे ही झुके हुए हैं मानो कि वो कृष्ण की रासलीला देख रहे हैं। बलराम जी को ब्रज में दाऊजी कहते हैं, दाऊजी मतलब बड़े भाई। और दाऊजी के मंदिर कई पाए जाते हैं सारे ब्रज में, एक का तो बहुत विशाल मूर्ति है दाऊ जी की। इस प्रकार से बड़े भाई बलराम जी तरह तरह से बड़े भाई के रूप में, कभी सखा के रूप में, कभी मधुर रस में, ऐसे भगवान की सेवा करते रहते हैं। तो आज शाम को बलराम जी की कई लीलाओं का के बारे में हम सुनेंगे। आज बलराम जी की कृपा की याचना हमें करनी चाहिए, क्योंकि बलराम आदि गुरु हैं। बलराम जी के कृपा के बिना व्रज रस में हम प्रवेश नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। जिस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम चैतन्य लीला में प्रवेश नहीं कर सकते, चैतन्य लीला के बिना हम कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं कर सकते चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना, ठीक उसी प्रकार से बलराम जी आदि गुरु हैं और आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाले हैं और व्रज रस भी प्रदान करने वाले हैं। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में वृंदावन को बहुत महत्व दिया जाता है। द्वारका और मथुरा ये भी है महत्वपूर्ण, परंतु वृंदावन जितना नहीं, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का मूल स्थान है। और इसलिए बलराम जी जो कि हमेशा श्री कृष्ण की सेवा वृंदावन में ऐसे करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उनके जन्म दिवस के ऊपर आज हम बलराम जी के चरण कमलों में प्रार्थना कर सकते हैं कि वो भी हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हम भी इस वृंदावन के रस में प्रवेश कर सकें। एक बूंद इस व्रज रस के सागर का हमें अगर प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। किसी के कोई प्रश्न है? नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के साथ यात्रा में थे कि जब वो वृंदावन गए थे और दक्षिण भारत गए थे? नहीं, चैतन्य महाप्रभु अकेले गए थे एक सेवक को लेकर, दक्षिण भारत में भी और जब वृंदावन जा रहे थे उस समय भी।